लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमेन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, फ्रतेल्ली तुत्ती के सातवें अध्याय मिलन की नवीन राहों की चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि हम हिंसा के शिकार हुए लोगों की सच्ची कहानियों को सुने, सच्चाई को उनकी आंखों से देखने का प्रयास करें और खुले हृदय से उन घटनाओं को सुने जिनका जिक्र वे हमारे लिए करते हैं। इस भांति हम बुराई के दंश को समझ सकेंगे जो युद्ध के हृदय में होती है। यह हमें शांति का चुनाव करने हेतु नादान समझे जाने से परेशान नहीं करेगी। श्रोताओं, नियम अपने में पर्याप्त नहीं होंगे यदि हम यह सोचते रहें कि वर्तमान समस्या का समाधान भय उत्पन्न करते हुए किया जा सकता है या परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार के भय दिखाकर रोका जा सकता है। वास्तव में यदि हम 21वीं सदी में शांति और सुरक्षा के मुख्य खतरों के बारे में, जैसे कि आतंकवाद, भेदभाव के संघर्ष, साइबर सुरक्षा, पर्यावरणीय समस्याएं, गरीबी, तो ऐसी चुनौतियों का सामना करने हेतु परमाणु प्रतिरोध की अपर्याप्तता हम में एक तरह से संदेह उत्पन्न करती है। ये चिंताएं हमारे लिए और भी वृहद हो जाती हैं जब हम मानवीय त्रासदी और पर्यावरण के बारे में विचार करते जो किसी तरह से परमाणु हथियारों के उपयोग से उत्पन्न होगा, जो हमारे समय और स्थान को कई रूपों में विकृत, असंतुलित और असंख्य रूप में प्रभावित करेगा। हमें अपने आप से यह पूछने की भी आवश्यकता है कि भय पर आधारित स्थिरता कितनी टिकाऊ होती है। जब यह वास्तव में भय को बढ़ाती और लोगों के बीच विश्वास के संबंध को कमजोर करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता झूठी सुरक्षा में स्थापित नहीं की जा सकती है। हम एक दूसरे को नष्ट करने, पूर्ण रूपेण से मटिया मेट करने या शक्ति स्थापित करने हेतु खींचातानी से शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन एक चुनौती है जो नैतिक और मानवीय अनिवार्यता दोनों बन जाती है। बढ़ती हुई दूसरों पर निर्भरता और वैश्वीकरण का मतलब है कि परमाणु हथियारों के खतरे की कोई भी प्रक्रिया आपसे विश्वास पर आधारित, सामूहिक और ठोस होनी चाहिए। यह विश्वास आपसी वार्ता के तहत स्थापित किया जा सकता है जो जन सामान्य की भलाई पर आधारित हो, न कि किसी छिपे हुए या विशेष हितों की सुरक्षा पर। जिन मदों का खर्च हथियारों और दूसरे सैन्य सुरक्षा के लिए किया जाता है, हम उनका उपयोग वैश्विक मद को सुदृढ़ करने हेतु करें जो मुख्य रूप से भुखमरी को खत्म करने और गरीब देशों के विकास में मददगार सिद्ध होगा, ताकि उनके नागरिक हिंसक या भ्रमक समाधानों का सहारा न लें या अधिक सम्मानजनक जीवन की तलाश में उन्हें अपने देश को छोड़ना ना पड़े। श्रोताओ, वहीं हम एक दूसरे तरह के समाधान को पाते हैं जो दूसरों को खत्म करता है, जो देशों को नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में लोगों को लक्षित करता है। यह मृत्यु दंड है। संत पापा संत योहन पौलुस द्वितीय ने स्पष्ट रूप से और दृढ़ता पूर्वक इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु दंड नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है और न ही दंडात्मक न्याय के लिए आवश्यक ही। हम इस स्थिति से पीछे नहीं हट सकते हैं। आज हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि मृत्यु दंड अस्वीकार्य है और कलीसिया दुनिया भर में इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। नया विधान रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराता है कि व्यक्तिगत रूप से हम न्याय को अपने हाथों में ना लें। वहीं अध्याय 13 के पद 4 में हम अधिकारियों के अधिकार की बात सुनते जहां वे बुराई करने वालों को दंड देते हैं। वास्तव में सामाजिक जीवन व्यवस्थित समुदाय से घिरा है जहां एक साथ रहने हेतु हमें नियमों की जरूरत होती है जिसका जानबूझकर उल्लंघन उचित निवारण की मांग करता है। इसका अर्थ यह है कि वैध सार्वजनिक प्राधिकरण अपराधों की गंभीरता के अनुसार दंड दे सकता है और न्यायिक शक्ति को कानून के दायरे में आवश्यक स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। श्रोताओं, कलीसिया के प्रथम सदियों से ही कुछ थे जो मृत्यु दंड की सजा का खुले रूप में विरोध करते थे। लक्तांतियुस उदाहरण के लिए कहते हैं, इस सजा का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति को मौत की सजा देना अपने में सदैव अन्यायपूर्ण है। संत पापा निकोलस प्रथम ने इस बात के लिए प्रयास किया कि मृत्यु दंड को खत्म किया जाए, साथ ही दोषीदारों को भी दोष मुक्त किया जाए। दो पुरोहितों की हत्या के संबंध में न्याय प्रणाली से होकर गुजरने वालों के लिए संत अगुस्टिन ने न्यायाधीश से इस बात की मांग की कि वे हत्यारों को मौत की सजा न दें। उन्होंने अपने तर्क में कहा कि हम आपको इन दुष्ट हत्यारों के संबंध में इस बात से दखल नहीं करते हैं कि आप उन्हें और भी अपराध करने की स्वतंत्रता दें। हमारी चाह यही है, न्याय उनके जीवन को लिए बिना या उनके शरीर के किसी अंग को हानि पहुंचाए बिना अपने में संतोषजनक हो और साथ ही कानून द्वारा प्रदान किए गए अनिवार्य उपहारों के द्वारा वे अपने तर्कहीन क्रोध में परिवर्तन लाते हुए स्वस्थ पुरुषों की भांति व्यवहार करें जो शांति में रहते हैं। इसके साथ ही वे अपने बुरे कार्यों को उपयोगी रोजगार में बदलें। यह भी एक सजा मानी जाती है जब बर्बर हिंसा को रोका जाता है और पश्चाताप के भाव उत्पन्न करने के उपाय प्रदान किए जाते हैं। इसे केवल दंडात्मक उपाय के बजाय लाभ माना जाना चाहिए। हम उनके पापों के अत्याचार को प्रतिशोध की इच्छा से ना भरने दें बल्कि उनके घावों को ठीक करने की इच्छा करें जो उन कर्मों के कारण उनकी आत्मा को घायल किया है। श्रोताओं, भय और आक्रोश आसानी से प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर सकते हैं और यह सजा को क्रूर तरीके से प्रेरित करता है। इस भांति सजा अपने में उपचार और समाज में पुनः एकीकरण की प्रतिक्रिया नहीं रह जाती है। आजकल कुछ राजनीतिक क्षेत्रों और कुछ संचार माध्यमों में सार्वजनिक और निजी हिंसा और बदले की भावना को उकसाया जाता है, न केवल अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जो कानून तोड़ने के संबंध में संदिग्ध हैं, चाहे यह साबित हुआ हो या नहीं। बहुत बार हम शत्रुओं के संबंध में जानबूझकर तोड़ मरोड़ की स्थिति को पाते हैं। रूढ़िवादी आंकड़े जो उन सभी बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें समाज भय के रूप में देखता है। इन छवियों को बनाने वाले तंत्र वही हैं जिन्होंने अपने समय में नस्लवादी विचारों को प्रसारित किया। इसके द्वारा कुछ देशों में हिरासत, बिना मुकदमे के कारावास और विशेष रूप से मौत की सजा को और अधिक खतरनाक बना दिया है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ले तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने युवाओं के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना उत्सव के प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा जो मेजोगोरी में 1 से 6 अगस्त तक जारी है। माता मरियम को समर्पित करते हुए संत पापा ने युवाओं को पूर्णता और ईश्वर को अपने आप को समर्पित करने से मिलने वाली सच्ची खुशी पर विश्वास करने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रीय प्रार्थना सभा की विषय वस्तु है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। विषय वस्तु को सुसमाचार के धनी युवक के कथन से लिया गया है। संत पापा ने उत्सव के युवा प्रतिभागियों को संदेश देते हुए चिंतन में कहा, जब धनी युवक यीशु से मिलने गया तब उसने अनंत जीवन की प्राप्ति का उपाय पूछा, अर्थात खुशी की प्राप्ति। संत पापा ने अपने पाठकों को स्मरण दिलाया कि उत्सव वास्तव में 1 सप्ताह की प्रार्थना और यीशु के साथ मुलाकात है, विशेषकर उनके जीवित वचन यूखरिस्त आराधना और मेल मिलाप के संस्कार में, जिसमें हमें प्रभु की ओर प्रेरित करने की शक्ति है। अतः सुसमाचार का वह युवक जिसका नाम हम नहीं जानते बल्कि भावना को जानते हैं, इस उत्सव में भाग लेने वालों का प्रतीक है। संत पापा ने याद दिलाया कि सुसमाचार में बतलाया गया युवक शिक्षित और ज्ञानी था और स्वस्थ बेचैनी से प्रेरित था, जिसने उसे सच्ची खुशी जीवन की परिपूर्णता खोजने के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि वह युवक यीशु से मिलने आया, जिन्होंने उन्हें ईश्वर के पास जाने का रास्ता दिखलाया जो सबसे भले हैं और सभी अच्छाइयों के स्रोत हैं। संत पापा ने लिखा, अनंत जीवन जिसकी कामना हम सभी करते हैं उससे निश्चय ही कोई भौतिक चीज से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि यह परिपक्वता के विभिन्न चरणों से पार होने की मांग करता है। संत पापा ने कहा, यीशु द्वारा संकेत दिए गए रास्ते का पहला चरण है अपने पड़ोसी के प्रति ठोस प्रेम, न केवल देखना बल्कि मुफ्त और पूर्ण प्रेम देना। यीशु ने युवक के हृदय में अनंत जीवन पाने की चाह देखी, किंतु उसकी कमजोरी पर भी गौर किया। उसकी कमजोरी थी कई भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति। यही कारण है कि दूसरा चरण जिसकी सलाह यीशु ने दी है योग्यता से देने के तर्क की ओर बढ़ना है। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ और अपने पास जो कुछ है उसे बेचकर गरीबों को बांट दो और तुम्हारा धन स्वर्ग में रखा रहेगा। यीशु अपना नजरिया बदलते हैं और जीवन की सुरक्षा के लिए चिंता नहीं करने बल्कि इस पृथ्वी के जीवन में अपना सब कुछ देने का निमंत्रण देते हैं, अर्थात प्रभु का अनुसरण करने का, जो अधिक परिपक्व होने का आह्वान है, देखने की नीति से पुरस्कार प्राप्त करने की, जो बिना किसी सीमा के मुफ्त में देता है। यीशु ने उसे उन सभी चीजों का त्याग करने की सलाह दी जो उसके हृदय को भारी बना रहा था और प्रेम करने से रोकता था। इसके द्वारा यीशु प्रेम करने के लिए स्वतंत्र होने और दूसरों के साथ संबंध में धनी बनने की सलाह देते हैं। संत पापा ने संदेश में कहा कि यदि हृदय संपत्ति से भरा हो तब प्रभु और पड़ोसी गौण हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक प्राप्त करने की लालसा हमारा दम घोटती और हमें नाखुश एवं प्रेम करने के अयोग्य बना देती है। तीसरा चरण है कि यीशु युवक को असली चुनाव करने की सलाह देते हैं। यीशु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। यह यीशु का शिष्य बनना है, अर्थात बाहर से उनका अनुसरण नहीं करना, बल्कि अपने हृदय की गहराई में उनके अनुरूप होना, ताकि बदले में अनेक भाई बहनों, माता पिता और बच्चों के साथ समृद्ध एवं खुशहाल जीवन प्राप्त कर सकें। संत पापा फ्रांसिस ने 3 अगस्त के ट्वीट संदेश में कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने संदेश में लिखा, आइए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि वह पौत्र आत्मा की कृपा और शक्ति से सुसमाचार के प्रकाश में अपना सुधार करने की कृपा पा सके। पिछले कुछ महीनों में कनाडा के कई गिरजाघरों पर हमला किया गया है और करीब 10 गिरजाघरों में आग लगाकर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। कनाडा के वैंकूवर शहर में पुलिस ने गिरजाघरों पर हमले की कई घटनाओं को देखा है, जिसमें खिड़कियों और भित्ति चित्रों पर पत्थर फेंकने एवं आगजनी की धमकी देने सहित 13 घटनाएं शामिल हैं। सारे के निकट कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर को 19 जुलाई को आग से नष्ट कर दिया गया। इसके कुछ ही दिनों पहले आगजनी का प्रयास विफल हो गया था। घटनाएं कनाडा में गिरजाघरों के खिलाफ हिंसा की एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में कुल 10 गिरजाघरों में आग लगाकर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, जबकि पूरे देश में दर्जनों अन्य गिरजाघरों में तोड़फोड़ हुई है और उन्हें अपवित्र किया गया है। गिरजाघरों पर हमले ख्रिस्तों द्वारा आवासीय स्कूल की प्रणाली में उनकी भूमिका के खिलाफ विरोध से संबंधित दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आदिवासी बच्चों को उनके घरों और परिवारों से ले जाकर उनकी मूल संस्कृति से अलग करने के उद्देश्य से स्कूलों में रखा गया था। मई के अंत में ब्रिटिश कोलंबिया के कामलूप्स में एक आवासीय स्कूल की साइट पर लगभग 200 अचिन्हित कब्रों की खोज की गई थी। उसके बाद अन्य स्कूलों में भी सैकड़ों अचिन्हित कब्रें खोजी गईं, जिनमें से कई अभी भी उजागर होनी बाकी हैं। आदिवासी नेताओं ने गिरजाघरों पर हमले की निंदा की है। प्रथम राष्ट्र की सभा के प्रमुख पेर्री बेलेगाट ने कहा कि संपत्ति को नष्ट करने से हमें शांतिपूर्ण, बेहतर और स्वीकार्य कनाडा का निर्माण करने में मदद नहीं मिलेगी, जिससे हम सभी चाहते हैं और जिसकी जरूरत है। हिंसा को समारोह में बदलना है और हमारे पूर्वजों से हमें शांतिपूर्ण अस्तित्व और आपसी सम्मान सीखना चाहिए। विचारशील संवाद ही रास्ता है, विनाश नहीं। इस महीने की शुरुआत में एक बयान में महाधर्म प्रांत ने भी वार्ता के महत्व पर जोर दिया था। बयान में कहा गया था कि आगे बढ़ने का सही रास्ता आदिवासी लोगों के साथ मेल मिलाप, वार्ता और प्रायश्चित का है। नवीनतम घटनाओं के बाद वैंकूवर में पुलिस का कहना है कि वे अपराधों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और सतर्कता बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। विज्ञप्ति में सर्जेंट स्टीव एडिसन ने कहा है कि सौभाग्य से वैंकूवर की इन घटनाओं में किसी को चोट नहीं आई है और अधिकांश नुकसान मामूली हैं। हालांकि हम इन अपराधों के बढ़ने से हर दिन अधिक चिंतित हो रहे हैं और हम इन अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को उससे रोकने की अपील करते हैं। भूखों को खिलाना एक करुणा का कार्य है, किंतु फिलीपींस के कालुकन धर्म प्रांत में एकजुटता अभियान का शीर्षक है। इस अभियान के द्वारा सबसे गरीब और बेघर लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।